27th December 1987, Avyakt Murli, Babdada, Kumaro Simra Bhat. Sada apne ko Raj Rishi samajhte ho. Ek taraf hai Rajya, dusri taraf hai Vairag. Dono ka balance ho. Behad ka Vairag, Vairag nahi, lekin prapti swarup bana deta hai. Kyunki purani duniya se Vairag laate ho. और नई दुनिया के मालिक बन जाते हो. तो नाम वैराग है लेकिन मिलती प्राप्ति है. छोड़ने में ही लेना है. एक देते हो और पदम लेते हो. तो बेहद का वैराग राज्य भाग्य दिलाने वाला है. एक जन्म के लिए वैराग, अनेक जन्मों के लिए सदा श्रेष्ठ भाग्य. ऐसे राजऋषि हो. राज ऋषि कुमार और कुमारियों का ही गायन है. ऐसे राज ऋषि आत्माओं को विश्व की आत्माएं दिल से प्यार करती है. चैतन्य से भी ज्यादा आपके जड़ चित्रों को प्यार से याद करते हैं. क्योंकि त्याग का भाग्य प्राप्त हुआ है तो ऐसे राज ऋषि आत्माएं हैं. इस नशे में सदा रहो. 27th December 1987, अव्यक्त मुरली, कुमारों से मुलाकात. बाबा कह रहे हैं, सदा अपने को क्या समझते हो? राज ऋषि समझते हो. एक तरफ है राज, दूसरी तरफ है वैराग. दोनों का बैलेंस. बेहद का वैराग, वैराग नहीं लेकिन प्राप्ति स्वरूप बना देता है. क्योंकि पुरानी दुनिया से वैराग लाते हो और नई दुनिया के मालिक बन जाते हो. तुम्हें नशा रहना चाहिए. किस बात का मंजू में? तो नाम वैराग है लेकिन मिलती प्राप्ति है. छोड़ने में ही लेना है. एक देते हो और पदम लेते. तो बेहद का वैराग राज्य भाग्य दिलाने वाला है. एक जन्म के लिए वैराग, अनेक जन्म क्या करता है? अनेक जन्म के लिए सदा श्रेष्ठ भाग्य. ऐसे राज ऋषि हो. राज ऋषि कुमार और कुमारियों का ही गायन है. ऐसे राज ऋषि आत्माओं को विश्व की आत्माएं क्या करती है? दिल से प्यार करती है. चैतन्य से भी ज्यादा आपके जड़ चित्रों को प्यार से याद करते हैं. क्योंकि त्याग का भाग्य प्राप्त हुआ है तो ऐसे राज ऋषि आत्माएं हैं. इस नशे में सदा रहो. तो राज ऋषि अर्थात क्या? पवित्र. कल की मुरली. राज ऋषि अर्थात पवित्र. राज ऋषि अर्थात एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ वैराग. राज ऋषि के कई सारे अर्थ है. यहाँ जो अर्थ दिया हुआ है इसको भविष्य से जोड़ा है. वैराग यहाँ मिलता, राज्य वहां. एक अर्थ. दूसरा, यहाँ वैराग करते हो और मिलता है उधर. लेते क्या हो और मिलता क्या है? और इधर दुनिया से वैराग और उधर विश्व के मालिक. एक तो ये अर्थ है. दूसरा अर्थ जो यहाँ का ये अर्थ है वो कौन सा है? राज्य और ऋषि. ऋषि अर्थात ऋषि का संबंध वैराग से है. एक तो वैराग और दूसरा राज्य. इन सब सुख सुविधाओं में रहने के बावजूद उसके बीच में रहते हुए वैरागी अवस्था, स्वराज्य अधिकार की अवस्था. तो सदा अपने को राज ऋषि समझते हो. एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ वैराग. मतलब यहाँ वैराग और उधर राज्य. बेहद का वैराग, वैराग नहीं लेकिन प्राप्ति स्वरूप बना देता है. क्योंकि पुरानी दुनिया से वैराग लाते हो और नई दुनिया के मालिक बन जाते हो. तो नाम वैराग है परंतु मिलता क्या है? प्राप्ति. छोड़ते हो, परंतु ये छोड़ना क्या है? लेना। क्या देते हो और क्या लेते हो? एक देते हो और मिलता कितना है? पदम। तो बेहद का वैराग्य राज्य भाग्य दिलाने वाला है। एक जन्म के लिए वैराग और अनेक जन्मों के लिए सदा श्रेष्ठ भाग्य। ऐसे राज ऋषि हो, ऐसे राज ऋषि और कुमार कुमारियों का ही गायन है। ऐसे राज ऋषि आत्माओं को विश्व की आत्माएं क्या करती है? बहुत प्यार करती है, दिल से प्यार करती है, चैतन्य से भी ज्यादा जड़ चित्रों को प्यार करती है, याद करती है, क्योंकि याद का भाग्य प्राप्त हुआ है। तो ऐसे राज ऋषि आत्माएं हैं, इस नशे में सदा रहो। तो राज ऋषि अर्थात उसमें राज्य है और वैराग है। वैराग किससे? पुरानी दुनिया छोड़कर बताओ,
अपने पुराने संस्कार।
सबसे पहले देह, इस देह से वैराग। उसके अंदर क्या क्या? उसके पहला तो देह के संबंध, जितने देह के संबंधी है उन सभी से वैराग। दूसरा देह के, वो बहुत सूक्ष्म है, देह के धर्म, देह के धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब देह के धर्म है। देह के कुछ और भी धर्म है, भूख प्यास, ये भी देह के धर्म में आता है। देह का भान, तीसरा पहला देह, देह के अंदर क्या क्या? सबसे पहले देह के संबंधी, देह के धर्म, देह का भान, स्त्री होना पुरुष होना, काला गोरा, ये सब देह के भान में आएगा। छोटा बड़ा, काला गोरा, मोटा पतला, सुंदर असुंदर, ये सब देह के भान में आएगा। फिर देह की प्राप्तियां, देह की इच्छाएं, देह के पदार्थ, देह को सुख देने वाले सारे पदार्थ। उसके बाद में देह के सुख, देह और देह के सुख, देह से प्राप्त होने वाले सारे ही सुख, इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख, ये जो भी है इन सभी, ये देह के अंतर्गत आता है, क्योंकि देह से प्राप्त जो भी है वो सब विनाशी है। देह से प्राप्त जो भी है वो अल्पकाल का है, थोड़े समय के लिए सुख प्राप्त होता है, पर बाद में वह सुख दुख में परिणित हो जाता है। इसके लिए सबसे पहला वैराग है देह से, परंतु उसके भी पहले वैराग है क्या? वैराग किसे कहेंगे? वैराग की परिभाषा, डेफिनेशन, वैराग, राग और विराग दो शब्द है, एक है राग एक है विराग, एक है अटैचमेंट एक है डिटैचमेंट, एक है अटैचमेंट एक है नॉन अटैचमेंट, एक है आकर्षण एक है विकर्षण, एक है अटैचमेंट दूसरा है रिपल्शन। तो एक है राग अर्थात अटैचमेंट, राग अर्थात आसक्ति, राग अर्थात आकर्षण, जहां और उसके विपरीत शब्द है विराग, विराग अर्थात जहां राग न हो। परंतु शब्दकोश में जो परिभाषा है और अध्यात्म में जो परिभाषा है उसमें भिन्नता है। शब्दकोश डिक्शनरी कहती है विराग अर्थात एब्सेंस, एब्सेंस से ज्यादा वो कहते हैं अपोजिट, राग का अपोजिट जो है वो विराग है। जैसे कोई एक व्यक्ति घर को छोड़ देता है, एक व्यक्ति घर में ही आ सकता है, परंतु दोनों का ही केंद्र बिंदु घर है, एक गृहस्थी और एक सन्यासी, दोनों भी घर का ही चिंतन कर रहे हैं। गृहस्थी उसमें डूबा हुआ इसके लिए चिंतन कर रहा है, सन्यासी ने घर छोड़ दिया इसके लिए भी वो घर का ही चिंतन कर रहा है। वास्तव में देखा जाए तो सन्यासी उसी का ही शीर्षासन है, किसका? गृहस्थी का, क्योंकि चिंतन दोनों ही एक का ही कर रहे। त्रिकोण में एक तरफ अगर राग है और दूसरी तरफ वैराग है, तो दोनों ही में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ये अपोजिट है। अध्यात्म जिसे वैराग कहते हैं या बाबा जिसे वैराग कहते हैं या बेहद का वैराग, वो है वीतरागता। वीतरागता उस त्रिकोण का ऊपरी बिंदु है। वीतराग अर्थात जहां राग और विराग दोनों से ही परे, या फिर अगर राग से जोड़ना है तो एब्सेंस ऑफ राग इस विराग या वीतराग। एब्सेंस जहां वो है ही नहीं, अपोजिट नहीं, उसका अपोजिट नहीं परंतु एब्सेंस। राग जहां समाप्त हो जाए, वो जो अवस्था जहां उत्पन्न होती है वो है विराग की अवस्था, वीतरागता की अवस्था या बेहद का विराग। तो राग विराग, राग अर्थात अभी राग अर्थात आसक्ति अटैचमेंट लगाव, जहां जहां राग होगा, राग वास्तव में अंधकार की तरह है, वहां वहां दुख की अवस्था आएगी, और विराग प्रकाश की तरह है, वीतरागता प्रकाश की तरह है। तो वैराग अर्थात एब्सेंस ऑफ राग, जहां पर राग ना हो। विषय विराग ईश्वरे अनुराग, भक्ति में कहावत है विषय विराग, विषयों के प्रति वैराग और ईश्वर के प्रति अनुराग। अनुराग अर्थात प्रेम, प्रीति, आसक्ति, लगाव, वो सब लव, रति, वो सब है अनुराग। तो सबसे पहले तो परिभाषा वैराग की, वैराग अर्थात राग का अभाव, एक वैराग अर्थात इस संसार से डिसइंटरेस्ट, रस न होना इस संसार की वस्तुओं से या किसी भी वस्तु से, व्यक्ति में रस न होना, ऐसा डिसइंटरेस्ट की जो अवस्था है वो है वैराग। किस किस से वैराग में सबसे पहला था देह, दूसरा एक था संस्कार, देह के संस्कार और देह के संबंधित हो गया, दूसरा वैराग देह में सब हो गया, देह छोड़कर। नेक्स्ट
अपने कौन विशेषताएं वो हैं जो जिनके ऊपर अभिमान है,
अहंकार से,
अहंकार से
आदत संस्कार एक ही है। मैं से, हाँ दूसरा है मैं, वैराग किससे, मैं से वैराग, मैं मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये जो मैं है ये धोखा देने वाला है, इसके लिए इस मैं से वैराग, इस अहंकार से वैराग, इस मेरेपन के भाव से वैराग, इस अहम भाव से वैराग, वो वैराग। तो दूसरा वैराग है मैं, तीसरा वैराग मैं और मेरा दोनों आ गया, मेरा जो जो है वो लगाव वाला है। तीसरा वैराग मैं और मेरा, पद पोजीशन सीनियर जूनियर, मैं ये हूँ, मेरी पोजीशन ये है। कल बाबा ने कहा था कोई भी क्या नहीं रखना है इस दुनिया से, कोई भी आश नहीं रखना है, कोई भी कामना नहीं रखना है, कोई भी तमन्ना नहीं रखना है, कोई भी इच्छा नहीं रखना है। अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्दों का प्रयोग है। इस संसार से तुम्हें कोई आश, आश डिक्शनरी में सारे ही का मीनिंग एक ही है डिजायर, परंतु हिंदी में अलग अलग अर्थ है। आश अर्थात होप, आशा, बी होपलेस इन वन सेंस, इस संसार के प्रति होपलेस, यहाँ पे कोई होप नहीं रखनी है, एक आशा। दूसरी है इच्छा, इच्छा संस्कृत का शब्द है, तमन्ना उर्दू या हिंदी उस तरह से, और एक है तीसरा शब्द कौन सा था, कामना, कामना का संबंध काम से है, ख्वाहिश, ख्वाहिश का संबंध महत्वाकांक्षा से, एम्बिशन से है, हसरत, हसरत का संबंध वेस्टेड इंटरेस्ट अर्थात कि कोई स्वार्थी भावना, हसरत, हसरत है हमारी बाबा कर दो पूरी आके, गीत है ना। तो अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ है हिंदी में। तुम्हें ना आश रखनी है, तुम्हें ना इच्छा रखनी है, तुम्हें ना कामना रखनी है, तुम्हें ना कोई भी तमन्ना रखनी है। कृष्णा डिजायर, कृष्णा इच्छा, तृष्णा संस्कृत का शुद्धतम शब्द है। तो इस संसार से कोई भी आश तृष्णा असरत ख्वाहिश इच्छा डिजायर नहीं रखनी। क्यों? क्योंकि सब विनाश होने वाला है। कहां थे हम? तीसरा वैराग किससे? मैं और मेरा। पहला था देह से, दूसरा था मैं और मेरे से, तीसरा है इस संसार की हर वस्तु से। अगर देखा जाए तो जो भी विनाशी वस्तु है, पद पोजीशन, तीसरा था पद और पोजीशन, इस संसार में जो भी पद और पोजीशन प्राप्त होती है उससे। चौथा नाम मान शान, वो पद पोजीशन में आ गया।
अनावश्यक चर्चाएं,
वाणी, अनावश्यक चर्चाएं, सूचनाएं, सूचनाओं का संग्रह करना, संसार की अनावश्यक सूचनाओं का की चर्चा करना, संग्रह करना, उससे वैराग। कहां क्या क्या हो रहा है, किसने क्या क्या किया, ब्राह्मण संसार समाचार, किसने न्यूज चैनल खोल के रखे हैं, ब्राह्मण संसार समाचार, उनके पास चले जाओ तो सारी न्यूज मिल जाती है। शांतिवन में क्या चल रहा है, सेंटर से क्या चल रहा है, मधुबन में क्या चल रहा है, ज्ञान सरोवर में क्या क्या चालू है, किसने क्या क्या किया, कौन 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 से डिपार्टमेंट में है, कहां से कौन चेंज हुआ, किसके साथ क्या क्या हो रहा है, तुम्हें क्या करना है। किसकी बट्टी चल रही है? एक होता है नॉलेज की रीति से, वो दूसरा यहां व्यर्थ का विस्तार है वहां पर इस समाचारों में। इसके लिए इन समाचार से डिसइंटरेस्ट, निरस, इंटरेस्ट नहीं है। बाबा ने 1695 की किसी मूल्य में कहा है, जो समाचार जितना दिलचस्प है उतना ही वो व्यर्थ है। जितना इंटरेस्टिंग न्यूज, सनसनीखेज, ब्राह्मण समाचार पत्र में जो सुर्खियां बन रही है, ऐसी जो भी खबरें हैं, वो वस्तुतः प्राय व्यर्थ ही होती है। तो समाचार संसार में, इस संसार में, बाहर के संसार का तो बात ही नहीं कर रहे हम, इस संसार का जो समाचार है, यहां क्या क्या हो रहा है, हमें क्या करना है, हम जान भी ले तो क्या हम बदल सकते हैं, चाहे सेवा केंद्र, चाहे मुख्यालय, चाहे कोई भी जगह, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। व्यर्थ ही का विस्तार होगा। तो समाचार, व्यर्थ समाचारों से वैराग। उसके बाद नेक्स्ट वैराग, पदार्थों से वैराग, और विकारों से वैराग। एक है व्यर्थ से वैराग, एक है विकारों से वैराग, एक है नकारात्मकता से वैराग। ये तीन अलग अलग। सबसे पहला विकारों से वैराग। जब तक विकारों से वैराग नहीं, तब तक उससे छूट नहीं सकते। उनके प्रति रस बना हुआ है, तब तक उससे छूटेंगे कैसे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जब तक इनके रस से आत्मा मुक्त नहीं होती। क्रोध में भी रस है। किसी को डांटने में कितना रस आता है, किसी को डांटने में पता चलता है ना हम कितने ऊपर है, वो नीचे है हमसे। हम क्या हमेशा नीचे ही रहेंगे क्या? सब लोग हमको नीचा समझते हैं, पर हम अगर हमसे जो नीचा है उसको जब डांट देते हैं तो अहंकार की वहां पर तृप्ति होती है और उसमें रस उत्पन्न होता है। विकारों के प्रति, विकारों का चिंतन करना और उनसे वैराग मन में लाना, यही वास्तव में भट्टी है। विकारों के प्रति भट्टी से गुजरने के बाद मन वैराग से भर जाए, रस समाप्त हो जाए। उस काम के प्रति जो रस है, जिन जिन ने उसको भोगा उनको मिला कुछ भी नहीं। काम, क्रोध, लोभ, संसार की वस्तुएं जिन्होंने एकत्र की, उन्हें प्राप्त कुछ भी नहीं हुआ। अहंकार, अहंकार की सीट कैसी है? संडे की मुरली, कांटों की सीट है, सजी सजाई सीट है, दिखावा है, धोखा है, आराम पसंद है, दिल पसंद है, परंतु धोखा देने वाली है। खाओ तो भी पछताओ, न खाओ तो भी पछताओ। दूसरों को देखकर ये इच्छा ना हो कि हम भी थोड़ा टेस्ट कर ले, टेस्ट करेंगे बाद में फिर पछताना पड़ेगा। इसके लिए इस सीट को छोड़ो, प्रयत्न भी मत करना इस सीट पर बैठने का। तुम्हें बैठना है समान की सीट पर, समान की सीट सदा श्रेष्ठ, सदा सुखी और सदा सर्व प्राप्तियों से संपन्न का अनुभव कराती है। इसके लिए सदा इसी रूहानी नशे में रहो, सदा इसी रूहानियत में रहो। जहाँ रूहानियत है वहां पर अभिमान नहीं है। भगवान उवाच सारे ही महावाक्य। विकारों से वैराग, दूसरा व्यर्थ से वैराग, जो कि व्यर्थ में फिर वो संसार समाचार, एक पॉइंट उसमें वो आ जाता है। व्यर्थ में है यहाँ का संसार समाचार, और व्यर्थ में टीवी, मोबाइल, अखबार, इसमें व्यर्थ भरा हुआ होता है। हाँ, अखबार अगर पढ़ना ही है तो एक कारण से पढ़ सकते हो, रावण की क्या क्या प्लानिंग चल रही है उसके लिए अखबार पढ़ा जा सकता है। संसार में विकारों का प्रादुर्भाव, संसार में विकारों की बहुतायात कैसी बढ़ रही है उसकी जानकारी के लिए, संसार कैसा तमोगति अधोगति और विकारों की ओर बढ़ रहा है, संसार में कैसा आतंक फैला हुआ है, संसार की वर्तमान स्थिति क्या है और उसको देखकर हमें अपने पुरुषार्थ की गति को कैसे बढ़ाना है, इसके लिए अगर पढ़ना है तो पढ़ो। परंतु वो छोड़कर नाटक, मूवी, फिल्म कौन सी आ रही है और कौन सी जा रही है, किस एक्टर के जीवन में, किस अभिनेता के जीवन में क्या हो रहा है, किसने किससे शादी की और किसने किसको छोड़ा, किसको कौन सा इनाम मिला और किसको नहीं मिला, व्यर्थ, सब व्यर्थ की कैटेगरी में है। पढ़ना है तो वैराग के लिए कि ये संसार की आदत है, हालत है, या फिर सेवा, हाँ वही मनसा सेवा, या फिर रहम दिल का भाव जागृत करने के लिए, संसार में कुकर्म विकर्म दुष्कर्म कैसे बढ़ रहे हैं, संसार की आत्माओं में किस तरह की भावनाएं प्रकट हो रही है और हमें अपना क्या कर्तव्य है वो याद दिलाने के लिए पढ़ो। प्राकृतिक आपदाओं का जो वर्णन है, कैसे दुख बढ़ रहा है, विकार बढ़ रहे हैं, प्रकृति का तांडव नृत्य क्या हो रहा है, इनको सकाश देने के लिए, अपने अंदर वैराग्य भाव दृढ़ करने के लिए पढ़ना तो फिर ठीक है। वहां जाके सुनो भाइयों और बहनों, कैसी सेवा करनी है भाइयों और बहनों, कल बोला था ना। तो व्यर्थ में अखबार, फिर है एक व्हाट्सएप, व्यर्थ का एक कारण। ब्राह्मण समाज में वो छोड़ो, ब्राह्मण परिवार में व्हाट्सएप जब नहीं था और व्हाट्सएप जब है तो सेवा बढ़ गई है या कम हो रही है?
दोनों ही है।
ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारिया व्हाट्सएप से जो ज्ञान की बातें शेयर करते हैं उससे वैराग बढ़ रहा है या कम हो रहा है? ज्ञान की बातें,
ज्ञान से बराबर है।
कितनी भी बड़ी अच्छी ज्ञान की बातें शेयर करे, परंतु ज्ञान की बातें तो है ही, दादियों ने कभी इनका सहारा लिया तब तो था नहीं, वो दूसरी बातें, पर फिर भी तो वैराग था, फिर भी तो सेवाएं हुई, यज्ञ का जो विस्तार हुआ वो इन आधार से हुआ। यहाँ ज्ञान की बातें चाहे कितनी भी कोई शेयर करे, ज्ञान की, मुरलियों की, चिंतन की, फिर भी उसमें आसक्ति उत्पन्न होगी, वो ज्ञान रह जाएगा एक तरफ, क्योंकि जन्म जन्म से संस्कार देह और देह के भान और देह के भोग के है। ज्ञान केवल किसी को भेज देने से, कोई क्लास भेज देने से, कोई लेक्चर भेज देने से और कोई लेक्चर शेयर कर देने से, वैराग इतनी सस्ती चीज नहीं है कि व्हाट्सएप उसे खरीदे। या कोई भी साधन उसे खरीद ले। उसके लिए साधना की आवश्यकता है। किसी को कुछ भेजकर हम किसी के मन में वैराग नहीं उत्पन्न कर सकते। वैराग इतनी सस्ती चीज नहीं है जिसे जिसकी इस तरह लेन देन की जाए। आंतरिक स्थिति है वैराग, एकांत में उत्पन्न होता है वैराग, चिंतन से उत्पन्न होता है वैराग, मौन से उत्पन्न होता है वैराग, अंतर्मुखता से उत्पन्न होता है वैराग, इस संसार के नश्वरता का चिंतन करने से। ये संसार कैसा व्यर्थ है, इसकी व्यर्थता को जानकर वैराग उत्पन्न होता है, ना कि कोई मैसेज लेने से और भेजने से। चाहे कितना ही कोई अच्छी पॉइंट हो बाबा की, हम ये सोच रहे हैं कि किसी को हम भेज दे तो उसका कल्याण हो गया, ये हमारा भ्रम है। क्योंकि जिसको भेज रहा है वो तीसरे को भेज रहा है, वो चौथे को भेज रहा है, वो पांचवे को भेज रहा है, वो बाबा का संदेश केवल ऐसे ऐसे घूम रहा है। कहाँ पे घूम रहा है? ब्रेन्स में घूम रहा है, दिल में नहीं पहुंच रहा है। वो ब्रेन का चक्कर लगा रहा है, एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन, दूसरे ब्रेन से तीसरे ब्रेन, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल, से मोबाइल में जा रहा है वो, दिल से दिल में नहीं जा रहा है। क्योंकि इधर दिल में गया ही नहीं है, इधर दिल में जाने से पहले ही उसे भेज दिया था। सब व्यर्थ का ही विस्तार है। इसके लिए चाहे कितना भी कोई अच्छा संदेश हो, अपने पास ही रखो उसको, जब तक उसका स्वरूप न बन जाए। उसी का खुद चिंतन करो, मनन करो, अध्ययन करो। तो व्यर्थ, और व्यर्थ के कारण खाना पीना और उसका विस्तार, सोना, खाने का और खाने का विस्तार, भोजन जो है, जो ब्राह्मण खा रहे हैं। प्रश्न सब के लिए है कि वो देह को जीवंत रखने के लिए खा रहे हैं या मन की तृप्ति के लिए खा रहे हैं। वो एक प्रश्न हर एक रोज अपने आप से पूछो, आज सारे दिन भर मुझे जीने के लिए खाना है या खाने के लिए जीना है। और जितना वो खा रहा है उतनी इस देह को आवश्यकता नहीं है, जितना वो खा रहा है। कल मुरली में कहा था कितना चाहिए, कल कितना कहा था,
250 ग्राम
तो नहीं चाहिए इसको जीवंत रखने के लिए, और ज्यादा इसकी आवश्यकता नहीं है। जो ज्यादा हम खा रहे हैं वो भोग विलास के ही संस्कार उसमें बना रहे हैं हम। और व्यर्थ तो खाना पीना, घूमना फिरना, ये देखू वो देखू, यहाँ देखू वहां देखू, इधर जाऊं उधर जाऊं, इसको देखू उसको देखू, इससे मिलू उससे मिलू, संसार के स्थान और संसार के व्यक्ति, संसार के स्थानों को देखकर बुद्धि भटकती है। और स्वतही अगर जाना हो रहा है वो दूसरी बात है, खुद प्लानिंग बनाकर इच्छा कर कर जाना देखना और उसको फिर सेवा का नाम देना, तो इससे भी वैराग। घूमना फिरना, भोजन, सोना, नींद कितनी होनी चाहिए ब्राह्मणों की? मुरली में आया है अभी अभी आशीष भाई, ब्राह्मणों की, संसार वाली आत्माओं की नींद होती है 8 घंटा, तुम्हारी होनी चाहिए आदि
2 घंटा रात के 4 घंटे।
24 घंटे का बोला है या 12 घंटे का बोला है?
12 घंटे।
नींद को जीतना ये अल्टीमेट लास्ट पुरुषार्थ है वास्तव में। जैसे जैसे योगी कर्मेंद्रिय जीत बनते जाता है, सबसे पहले तो काम को जीतता है, फिर विकारों को जीत लेता है, उसके बाद में फिर भोजन को जीत लेता है, उसके बाद में फिर नींद को जीतने की प्रक्रिया चालू होती है। सीधा अगर कोई कहे मैं आधा सोऊंगा तो योग में अपनी नींद को पूरी करेगा और मुरली क्लास को अपना बेडरूम बनाएगा। जैसे हिस्ट्री हॉल में 5:15 से लेकर तो 7 बजे तक क्या करते हैं आत्माएं, हिस्ट्री हॉल को क्या बना रखा है, बेडरूम बना रखा है। जब भी जाओ कोई ना कोई सोता है वहां पर, योग के समय नहीं, योग के बाद 5:15 से लेके 7 बजे तक। क्यों? क्योंकि वहां कोई नहीं रहता है उस समय, वहाँ नींद अच्छी आ जाती है,
तो प्रधान नहीं।
परंतु जो नींद वहाँ कर रहा है हिस्ट्री हॉल में, वहाँ के वाइब्रेशंस को दूषित कर रहा है। जब भी इस समय हिस्ट्री हॉल में जाओ, कोई ना कोई वहाँ सोता ही रहता है। जैसे कि बाबा से पता नहीं क्या कर रहे हैं वहाँ पर, कुछ फैमिली बहुत ही फ्रेंडली रूल रही है, छतरी ध्यान में गए, हो भी सकता है, हम बता नहीं सकते, ऊपर से तो कुछ दिखता नहीं है, गुप्त है यहाँ सब कुछ। तो नींद को जीतने का पुरुषार्थ नहीं है, वास्तव में नींद को जीतना ये रिजल्ट है योगी की अवस्था का। योगी गुड़ाकेश कहा है अर्जुन को गीता में, हे गुड़ाकेश, गुड़ाकेश अर्थात हे नींद को जीतने वाले योगी, कॉन्करर ऑफ स्लीप, स्लीप को कॉन्कर करना, जबरदस्ती यदि करो, यदि दमन करो, जबरदस्ती अगर करोगे तो विपरीत परिणाम होंगे, डिप्रेशन और शरीर की बीमारियां उत्पन्न होगी। वो परिणाम है सहज, स्वतः परिणाम है कि सोए है और नहीं है, एक जैसी स्थिति है। जैसे क्योंकि एक बहुत ही क्रांतिकारी वाक्य है, हमको वास्तव में नींद की आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता आराम की है, नींद की नहीं। आत्मा को आवश्यकता किसकी है? आराम की, नींद की नहीं है। नींद एक मार्ग है आराम प्राप्त करने का। अगर वही आराम किसी और रीति से प्राप्त किया जाए तो नींद करने की आवश्यकता ही नहीं है। द स्लीपलेस योगी, स्लीपलेस योगी पर एक चैप्टर है स्वामी योगानंद की, जो किताब है सबसे फेमस किताब जो है ना, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसमें एक फुल चैप्टर है स्लीपलेस योगी के ऊपर, जिसमें एक माता दिखाई है योगी कि जो कभी नींद ही नहीं करती, वो कहती मुझे आवश्यकता ही नहीं है। वास्तव में नींद बहुत जरूरी है, पर एक रीति से देखा जाए तो विदेशों में तो द्वापर युग से अब तक जब भी किसी को सजा देनी होती थी, सबसे क्रूएल, बार्बरिक, सबसे ही बर्बरतापूर्ण जो सजा है वो है उसकी नींद को छीन लो तो वो पागल हो जाता है व्यक्ति, ढोल के अंदर बंद करो और मारते रहो 24 घंटे ऊपर से, अगर वो राज नहीं बताता है शत्रु का कोई आदमी, इस तरह से सजा दी जाती थी। आवाज ही आवाज, ढोल में बंद करो और ऊपर से मारते रहो, उसके कानों में निरंतर आवाज, एक मिनट भी वो सो ना सके। परंतु योगी कुछ और है, योगी अगर अपने आराम का साधन ढूंढ ले जो कि नींद नहीं है, तो उसकी नींद असत ही कम हो जाएगी। तो आत्मा को किसकी आवश्यकता है? आराम की, नींद की नहीं। नींद एक माध्यम है, सशक्त माध्यम है आराम प्राप्त कराने का। रात में सो जाओ, सुबह फ्रेश हो जाओ, अगर रात में नहीं सोएंगे तो सुबह फ्रेश नहीं होंगे। परंतु योगी के शरीर में भी चेंजेस होने लगते हैं, उसके भोजन की रिक्वायरमेंट भी धीरे धीरे कम होने लगती है, उसका शरीर वैसा ऑपरेट नहीं करता है जैसे कि बाकी लोगों के शरीर ऑपरेट करते हैं। वहां बहुत सारी चीजें परिवर्तन हो जाती है, इतने सूक्ष्म तल पर होती है कि वहां पर विज्ञान भी अब तक पहुंचा नहीं है। अंतर्दृष्टि, दूरध्वनि, क्लायर ऑडियंस, क्लायर ऑडियंस, ये सारी सिद्धियां प्राप्त होने लगती है। तो कहां थे हम? बैराग पर, व्यर्थ पर, व्यर्थ में थे, नींद में, बहुत ज्यादा नींद करना। आज बहुत सेवा की, इसके लिए ज्यादा नींद करो, अर्थात सेवा में व्यर्थ था, अगर ये संकल्प आ रहा है तो। जो अशरीरीपन की सेवा है उसमें थकान नहीं होती है। अगर थकान ज्यादा हो रही है सुबह से लेकर रात तक, इसका अर्थ दिन भर में योग का प्रयोग नहीं किया, इसका अर्थ रूहानी ड्रिल का अभ्यास नहीं किया, इसका अर्थ अशरीरीपन का प्रयोग नहीं किया, इसका अर्थ देह भान में आकर वो सेवा हो रही है, वहां पर थकान है, शरीर की थकान। वास्तव में सेवा करने के बाद शरीर भी न थके, आदत है वास्तव में वो। एक उसके बाद में वैराग, ये तो हो गया व्यर्थ में, बहुत है और विस्तार, उसको छोड़ो अभी। नेक्स्ट वैराग, वाणी, वाणी से वैराग, ये भी एक बहुत ऊंचा और बहुत ही सूक्ष्म वैराग है, क्योंकि ये वैराग मौन की तरफ ले जाने वाला है। वास्तव में शब्द कभी भी हमें सत्य तक नहीं पहुंचा सकते, शब्द जो है वो कभी भी सत्य तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि सत्य अगर परम धाम में स्थित होना है, सत्य यदि फरिश्ता स्वरूप की स्थिति है, तो वो वाणी से प्राप्त नहीं हो सकती। वाणी, हाँ, वाणी मौन तक पहुंचा सकती, और फिर मौन सत्य तक ले जाएगा। वाक्पटु, वाक्पटुता, बीइंग रिटोरिक नेवर लीड्स टू ट्रुथ, इट इज साइलेंस दैट लीड्स टू द ट्रुथ। तो वाणी का उद्देश्य केवल कहां तक लाना है, मौन तक पहुंचाना है, मौन लेके जाएगा सत्य तक। तो वाणी से भी वैराग, बहुत ज्यादा बोलने की इच्छा, बहुत ज्यादा बोलना, क्योंकि ज्यादा बोलना फिर उसमें चंचलता आती है, और चंचलता भी परसों की मुरली अवगुण है, श्री कृष्ण का उदाहरण। चंचलता भी एक अवगुण है, बहुत ज्यादा बोलने की इच्छा, बहुत ज्यादा डिस्कस करना। ज्ञान की बातें दूसरी बात है, पर बाहर की व्यर्थ की बात उसमें न चाहते हुए भी व्यर्थ आएगा। तो हंसी मजाक, इससे भी वैराग। तो ये सारी थी, और किससे वैराग, और भी कुछ रहा है, विकार, व्यर्थ, निगेटिविटी, निगेटिविटी, निगेटिव देखने की आदत, निगेटिव सुनने की आदत, निगेटिव वर्णन करने की आदत। संडे की मुरली, दादी से मुलाकात, क्या कहा था बाबा ने, कौन सी विशेषता हो जाए तो यहाँ बाजे बजेंगे,
विशेषता देखने,
विशेषता देखना, विशेषता सुनना, विशेषताओं का वर्णन करना, ये तीन चीजें करनी है। तो क्या होगा, जैसे वहाँ कोई प्रोग्राम में बाजे बजते हैं, वैसे इस ब्राह्मण परिवार में खुशी के बाजे बजेंगे या साज बजेंगे। विशेषता देखना, विशेषता सुनना, विशेषता वर्णन करना, क्योंकि जैसे ही निगेटिव देखते हैं, निगेटिव वर्णन करते हैं, निगेटिव सोचते हैं, तो वैसे ही संकल्प चलते हैं और फिर संस्कार बनते हैं। चाहे वो फिर वो व्यक्ति कितना ही अच्छा करे कुछ, परंतु हमारा दृष्टिकोण ही ऐसा है कि हम वो निगेटिव ही देखते हैं। इसके लिए निगेटिविटी से वैराग। तो टोटल कितने प्रकार हो गए वैराग के, सबसे पहला देह, देह में, देह के संबंध, देह के धर्म, देह के पदार्थ, देह की इच्छाएं, देह की प्राप्तियां, देह की वस्तु, देह के, देह का भान, देह के भोग, देह का विलास, देह के रस, ये सारे देह से संबंधित है। दूसरा वैराग पद, पोजीशन, मैं और मेरा का, मैं से वैराग। चौथा वैराग पदार्थ से वैराग, इस संसार की, संसार समाचार से वैराग, व्यर्थ से वैराग, विकार से वैराग, और नेगेटिविटी से वैराग, और वाणी से वैराग, और खाना पीना, घूमना फिरना, सुख, हाँ, फिर है साधन, जिसमें व्हाट्सएप एक है साधन, साधनों के प्रति वैराग भाव हो। वैराग अर्थ ये नहीं कि साधनों को उठाकर फेंक दे, उसका प्रयोग करते हुए भी उससे अनासक्त रहना। वो प्रयोग कर रहे हैं परंतु उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसके ऊपर निर्भर नहीं है। है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, ऐसी हमारी स्थिति चाहिए। सुख सुविधाओं से वैराग। आज बिस्तर मिल रहा है सोने को, कल जमीन पे अगर सोने को कहा जाए तो दुख ना हो,
कमर से भी हो जाएगी।
आज सब कुछ मिल रहा है खाने के लिए, पंच पकवान, 36 प्रकार के भोग, कल कुछ भी नहीं मिलेगा, सूखी रोटी, दाल, उसमें केवल पानी,
ढूंढनी पड़ेगी,
नो स्वीट्स, नो टोली, तो भी स्थिति वैसे ही रहनी चाहिए। आज सब कुछ मिल रहा है, कल कुछ भी न मिले तो भी स्थिति वैसी ही है। सब कहते हैं हम खाते तो है, परंतु नहीं भी मिला तो भी ठीक है, परंतु क्या वो न भोगने का संस्कार कितना है, उसकी आदत कितनी है? इसकी तो बहुत आदत है, बिस्तर की आदत बहुत है, जमीन की आदत कितनी है? जीरो। फिर धड़कता हुआ वैराग चाहिए। तीन प्रकार के वैराग हैं, एक है मंद वैराग, एक है मध्यम वैराग, तीसरा है तीव्र वैराग। और दो प्रकार के वैराग हैं, एक है अविनाशी वैराग, दूसरा है शमशानी वैराग, विनाशी वैराग या मरकट वैराग। मरकट अर्थात बंदर, बंदर का उदाहरण है ना, वो जो घड़ा है उसमें चने रखे हुए, बंदर को पता है उसमें चने हैं, वो हाथ डालता है और हाथ फंस जाता है, और उधर से मालिक आता है और पकड़ता है उसको और मारता है, पिटाई करता है और छोड़ देता है। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में फिर से वो बंदर वही मड़का देखता है और उसको लगता है फिर से हाथ डालू, सीखा ही नहीं है पहली भूल से, वो क्षणिक वैराग्य आया था। जैसे माँ, ये उदाहरण बाइबल का दिया हुआ है, जैसे माँ प्रसव पीड़ा से जब गुजरती है तो सोचती है इसके बाद अब नहीं चाहिए बच्चा, इतना दर्द, इतनी पीड़ा, परंतु बच्चा आता है बाहर, उसके बाद में भूल जाती है और वापस वही पुनरपि जननम, जठरे शयनम, वही चक्कर चालू रहता है। मतलब दुख आया परंतु वैराग उत्पन्न नहीं हुआ है। तो एक वैराग है और दूसरा है शमशान, उसी को कहते हैं जैसे शमशान में जाओ तो क्या लगता है, आग की लपटें निकल रही है, सब व्यर्थ है, छोड़ो ये मतभेद, छोड़ो ये सुख सुविधाओं के पीछे भागना, कितना वैराग आता है वहां पर भी, परंतु वहां पर भी सबको नहीं आता है। जो साक्षी होकर शमशान घाट में जाए और उस चिता को जलता हुआ देखे तब वैराग आएगा, नहीं तो नहीं। अगर ये इधर रखो, ये उधर रखो, ये करने में लगे तो वैराग कहां से आएगा। आधे लोग तो इसी में लगे रहते, ये इधर रखो वो उधर रखो, ये लकड़ी उधर, ये लकड़ी उधर, ये सामान कहाँ है, वो सामान कहाँ है, ये लाया ये नहीं लाया, नहीं ड्यूटी है, परंतु ड्यूटी होते हुए भी आंतरिक स्थिति मौन की होनी चाहिए और वैराग की होनी चाहिए, तो ही वहां जाने का फायदा है। शमशान में जाने का एक ही तो फायदा है, बाकी तो वो ड्यूटी वो ऐसे समझता है बस ये मेरा कारोबार समझ के करता है वो। जब कारोबार समझ के किया जाए तो कोई वैराग नहीं आएगा। अगर वहां पर भी स्टेज पर बाबा आए हुए, भगवान आया हुआ है, पर अगर कारोबार समझा जाए और घूम रहे तो कोई अनुभव नहीं होगा। हाँ वो दूसरी बात है, यहाँ कारोबार समझकर जब किया जाता है तो वैराग नहीं होता है। एक भाई जो हम आते हैं, बड़े सीनियर है, वो कहते हैं हमेशा बाबा से टोली लेते, कहते बाबा से टोली लिया बस अल्पकाल का सुख मिला, हो गया अब क्या, सामने जाके लिया टोली अल्पकाल का सुख मिला खत्म, मतलब हो गया वो उतना करना था वो कर लिया, तो उससे कोई अनुभव नहीं होगा। अनुभव का आधार वो स्टेज पे घूमना नहीं है, ये अव्यक्त मिलन है। अव्यक्त मिलन का आधार स्थान से नहीं है, स्थिति से है, कहां कोने में कौन बैठा है, हो सकता है सबसे पीछे जो माता बैठी है उसको अनुभव होगा। स्टेज पे घूमने वाले कारोबार समझ के पूरा कर लिया, इसके लिए वैराग। तो शमशानी वैराग अर्थात गए, आग की लपटे देखी, सोचा संसार विनाशी है। संसार के लोगों को वैराग आता है थोड़े, जैसे ही घर में जाते हैं फिर पत्नी पति बच्चे और वो भूल गया, खत्म खलास। तो एक है क्षणिक वैराग, एक है शमशानी वैराग, उसको मरकट वैराग्य कहते हैं, अल्पकाल का वैराग, विनाशी वैराग। दूसरा है सदाकाल का वैराग, सदाकाल का वैराग मतलब अविनाशी। उस वैराग का आधार दुख नहीं है, वास्तव में सुख है। क्या एक दूसरा प्रश्न है, लास्ट प्रश्न पूरा करते हैं फिर इसको, इस चर्चा को। एक दुख से वैराग आता है या सुख से वैराग आता है?
सुख भोगने के बाद जो दुख मिलता है उसे वैराग आता है।
दुख भोगने के बाद वैराग तो आता है, परंतु दुख से उत्पन्न जो वैराग है वो सदाकाल का नहीं है। सूक्ष्म सिद्धांत यहाँ पर एक वेरी वेरी डीप फिलोसॉफी है। वास्तविक वैराग जो आता है वो सुख से आता है, क्योंकि दुख में आश बनी रहती है कि आज दुखी है कल तो सुखी हो ही जाएंगे। बुद्ध, महावीर, इनको वैराग दुख से आया, वो तो सुखों में थे। दुखी व्यक्ति तो आशा करते रहता है, एम्बिशंस, इच्छाकांक्षी होता है, महत्वाकांक्षी होता है, उच्चाकांक्षी होता है, उसमें बहुत सारी इच्छाएं होती है, परंतु 99% जो संसार में लोग हैं उनको दुख से आता है। परंतु क्या फिर वो वैराग वास्तव में वैराग है? वास्तव में वैराग जो आता है दुख, ये जो सुख है ये व्यर्थ हो जाए, यहाँ के जो सुख है ये सब व्यर्थ है, सुख मिल रहे। एक जो भिखारी कभी उपवास नहीं करता है, उपवास किसके लिए कहा जाता है? जिसके पास सब कुछ है उसके लिए कहा जाता है, वो उपवास कर सकता है। भिखारी कहे मैं आज उपवास है तो कौन मानेगा? भिखारी कहेंगे ये 5-star होटल बिल्कुल फालतू है, मैं कभी नहीं जाऊंगा इधर, बिल्कुल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है यहाँ का भोजन, तो इसको क्या कहेंगे? वो तो जो उसमें है वो कह सकता है, जिसके पास सब कुछ है वो कह सकता है ये सब व्यर्थ है। सब कुछ होते हुए भी उनकी व्यर्थता को जान लेना अर्थात वैराग। वास्तविक वैराग सुख से उत्पन्न होता है, दुख से नहीं। दुख में अगर किसी का कोई मर गया तो सोचता है अरे सब मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, थोड़े समय के लिए रहता है और फिर कोई मिल जाएगा जीवन में, एक पति मर गया, सोचती है स्त्री कि वैराग, परंतु कोई दूसरा मिल जाता है, फिर से वही इच्छा है, वही इच्छा है, फिर से प्रकट होती है सारी की सारी। ओपीडी में हमारे एक पेशेंट आता था, उसकी युगल ने शरीर छोड़ दिया बाहर का, इतना रोया इतना रोया, इतना दुख इतना दुख, ओपीडी के बाहर वो जो गेट है सीढ़िया, वहां बैठकर चीख चीख के रो रहा था जोर जोर से, जोर जोर से, जोर जोर से। 2 महीने के बाद आया दूसरी शादी का इन्विटेशन देने, डॉक्टर साहब जरूर आना।
मार्केट
कहाँ गया वो वैराग, वेंस दैट वैराग, कहाँ चला गया, कहाँ गुम हो गया? दुख से नहीं आता है वैराग, वैराग तो सुख, सुख की ही व्यर्थता को समझ लो कि ये जो सुख है, ये जो हमें प्राप्त है, ये इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे अव्यक्त स्थिति नहीं बनने वाली है। जो सुख सुविधाएं है इन्हीं से रहते हुए, जिसके पास है ही नहीं सुख सुविधाएं, जिसके पास मोबाइल ही नहीं है और कोई है, ये व्हाट्सएप फालतू है मैं कभी नहीं यूज करूंगा, तो कौन मानेगा उसको? ये तो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। जिसको पता ही नहीं इंटरनेट क्या होता है, वो कहेगा ये इंटरनेट में सब फालतू है, ये वैराग नहीं है वैराग।
इंटरनेट की व्यवस्था करने के लिए फिर छोड़ना चाहिए।
जिसके पास है ही नहीं, जिसके पास है ही नहीं, वो सीखे उनसे जिनके पास है। जैसे विवाहित अविवाहित, विवाहित अविवाहित को जरूरी नहीं है विवाह करके सारे अनुभव ले संसार के दुखों के। वाइस मैन लर्न्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, वाइसर मैन लर्न्स फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस, वाइसेस्ट मैन लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ बोथ। जो बुद्धिमान है वो दूसरों से सीखता है, जो उससे थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान है वो स्वयं के अनुभव से सीखता है, पहला दूसरों के अनुभव से, दूसरा अपने अनुभव से, और तीसरा दोनों के अनुभव से। जरूरी नहीं है आग में हाथ डालने की और फिर पता करे कि हाँ बुक में जो लिखा है ना, आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, ये राइट है। ये सिद्धांत को जानने के लिए उसमें आग में हाथ डालने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने डाला है और जो जल गए हैं और जो भुगत रहे और जो डूबे हुए हैं और उससे छूटने का प्रयास न कर रहे, जिन्होंने लड्डू खाया है, जिन्होंने नहीं खाया है, वो उनसे सीखे जिन्होंने खाया है। कहावत कहती है दोनों पछताते हैं, पछताओ न खा के, ये बहुत अच्छा है, चलेगा अकॉर्डिंग टू कहावत, क्योंकि न पछता कर, न खाकर पछताने में वो संस्कार नहीं बनाया अभी, परंतु खाया संस्कार बना, अब उससे मुक्त होना, ये पुरुषार्थ ज्यादा है उधर। इसके लिए 2 प्रकार के वैराग, शमशानी वैराग, मरकट वैराग, क्षणिक वैराग और सदाकाल का वैराग। तो सदाकाल का वैराग होता है सुख है उस सुख की व्यर्थता को समझने से, उस सुख का और उस दुख का दोनों का ही चिंतन करके ऊपर निकल जाना, वीतराग, त्रिकोण का, ट्रायंगल का, ऊपर का कोण, इसको भी छोड़ दिया उस। हाँ तो सुख है ना, तभी चिंतन करना दुखों का, सुख का भी व्यर्थता का। किसको गीत गाना है? आ जाओ आरती, गीत गाना है? अच्छा आपने ही तो बोला था गीत,
तो क्या जो भी सुनाना सुना दो, आज जाना ना वापस, कल ही जाएगी सुनाना, तो आज पड़ेगी, कोई भरोसा नहीं शाम को चलेगी तो।
कैसा लगा आपका? ऐसा लगा मधुबन की रे कब आना है,
अच्छा गीतों से एक दूसरा वैराग्य है, गीत संगीत। बाबा ने इसके बारे में कहा, बहुत ज्यादा इसमें नहीं चले जाने, अपने काम का जो है वो उसमें से निकाल लेना। ओम शांति।